वैष्णव कवि की रूपोपासना। वैष्णव कवि भी रूप के इस पहलू को समझता है। अंतर यह है कि उसका रूप चरम रूप है, जिसकी उपासना में वह अरूप की परवाह नहीं करता। यह रूप कल्पना प्रसूत नहीं है, बल्कि कल्पना से परे है। रविन्द्रनाथ का तत्ववाद और उपलब्धि एक ही वस्तु है, इसलिए उसके निकट कल्पना और भक्ति में कहीं विरोध नहीं हो सकता। वैष्णव कवि कल्पना और भक्ति के दो चीज समझता है। जहाँ उसकी कल्पना रुक जाती है, अर्थात जब रूप मोहन हो उठता है, सारी चित्र वृत्ति मुग्ध हो जाती है, वहीं उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। कवि वैष्णव बिहारी कल्पना के उस ऊंचे स्तर तक पहुँच कर रुक जाते हैं, जहाँ वह हत चेष्टा हो जाते हैं, मुग्ध हो जाती है। भक्त वैष्णव और आगे बढ़ता है, भक्त वैष्णव और आगे बढ़ता है और अपनी चरम उपासना आत्मनिवेदन में अपना सर्वस्व आहुत कर देता है। वैष्णव कवि के इस भाव को न समझकर वर्तमान युग के आलोचक उसे टाइप या फॉर्मल हो जाना कहते हैं। हमें टाइप या फॉर्मल शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, मगर यूरोप के पंडित कभी कभी कहा करते हैं कि टाइप में आकर आर्ट अवनत हो जाता है, अर्थात वे इन शब्दों को कुछ अनादर के साथ व्यवहार करते हैं। इस संबंध में एक कला समीक्षक का कहना है कि फॉर्मल कहकर शिल्प की अवज्ञा करता है। इस युग में हमें संयत करना होगा। जिस प्रकार काव्य में, उसी प्रकार चित्र और शिल्प कला में आर्ट को फॉर्मल होना ही पड़ता है, किंतु इसलिए एकाएक भाव के लिए एक संपूर्ण फॉर्म पा सकना जाति और कला के इतिहास में मामूली बात नहीं है। बात असल में यह है कि जिस जाति ने जिस रूप को निरंतर मनन के द्वारा एक श्रेष्ठ रूप दिया है, वह सौंदर्य की सृष्टि को विशिष्ट होने से बचाता है। एक जगह हमने चीन की कला के संबंध में एक यूरोपियन समालोचक का एक उद्धरण पढ़ा था, जिसका भाव यह है कि कला के रस को लगातार जारी रखने में चीन वालों ने संसार की अन्य किसी जाति से अधिक सफलता पाई है, क्योंकि चीन की कला एक विशेष प्रकार में 4000 वर्षों से बराबर चली आ रही है। कला के विषय में चीन वालों के बारे में जो बात कही गई है, यही बात काव्य के विषय में वैष्णव कवियों के बारे में कही जा सकती है। पर जिस लिए एक विशेष आकर भंगी ग्रहण करने के कारण चीन की कला में रस का अभाव बताना धृष्टता है, उसी प्रकार वैष्णव कवियों की रूपोपासना को भी वैचित्र विहीन कहना अनुचित है। यह तो हुई टाइप और फॉर्म की बात, पर कुछ समालोचक इसके विपरीत विचार रख कर भी वैष्णव कवि की रूपोपासना को हेय समझते हैं। वे फॉर्म और टाइप को स्वीकार कर लेते हैं, पर इस फॉर्म के साथ चित्तवृत्ति की मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, अर्थात वे कृष्ण और राधा के विशेष रूप के संबंध में कोई आपत्ति नहीं करते। वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि रूपातीत को एक कल्पनातीत रूप में बांधना पड़ा है, पर साथ ही यह भी निश्चित कर देना चाहते हैं कि उस स्वीकृति फॉर्म को अमुक अमुक वित्त वृत्तियों के साथ बांध लेना चाहिए। देवी को अगर एक रूप दिया गया हो तो उस रूप की परितृप्ति के साधन भी निश्चित होने चाहिए। इस श्रेणी में वे पंडित भी आते हैं जो राधा और कृष्ण के संयोग श्रृंगार को त्याज्य समझते हैं। असल में रूप के साथ जब वृत्तियों को बांध लेते हैं, तभी वह बंधन से उतरकर बाधा के रूप में खड़ा हो जाता है। तारा या त्रिपुर सुंदरी का रूप भी अनिश्चित है और साधना पद्धति भी। पर वैष्णव कवि का रूप तो निश्चित है, किंतु साधना पद्धति अनिश्चित। कृष्ण की उपासना पिता, स्वामी, पुत्र, सखा, माता और प्रेमी आदि नाना रूपों में हो सकती है, वह बंधन है पर बाधा नहीं। तुलसीदास कहते हैं, मोहि तोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपाल चरण सरण पावे। यही वैष्णव कवियों की रूपोपासना है। रूप के अतीत अरूप अरूप सत्ता को वह भूल जाता है, पर इस बंधन की स्वीकृति को सार्थक करता है और चित्त वृत्ति की मुक्ति में। ठीक उसी प्रकार नदी अपने तटों की सार्थकता अपने स्रोत की मुक्ति में पाती है। इसलिए वैष्णव कवि की ठोस रूपोपासना पेगन की रूपोपासना से अलग है। 19वीं शताब्दी के दार्शनिकों का विश्वास था कि मानव सभ्यता के प्रथम युग में मनुष्य ने भय और कौतूहल वश नाना अदृश्य शक्तियों के नाना रूपों की कल्पना की थी, परंतु वर्तमान शताब्दी में नृत्यत्व शास्त्र के नए आविष्कारों ने इस विश्वास की जड़ हिला दी। आज संसार का जिन जातियों को आदिम श्रेणी का समझा जाता है, उसमें बिना किसी अपवाद के इस बात का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ज्यों ज्यों पुरानी जातियों के पुराने इतिहास का प्रकाशन हो जा रहा है, त्यों तो यह बात प्रकट होती गई है कि भयमूलक रूपों की कल्पना मध्यवर्ती स्थिति की उपज है, आदिम की नहीं। प्राग ऐतिहासिक युग के विचित्र दीवालों, गुफाओं और शास्त्र आदि के अध्ययन से नेतृत्व वेताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि आदिमानव की रूप दृष्टि के दो कारण हैं। प्रथम यह कि आदिमानव का विश्वास था कि जिस चीज का चित्र बनाया जाता है वह वस्तुतः बढ़ा करती है। अगर एक हिरण का चित्र बनाया गया तो वन में अनेकों हिरण की वृद्धि होगी। एक बादल को अंकित करना आकाश में बादलों की वृद्धि का उपाय समझा जाता था। दूसरा कारण यह था कि आदिमानव चित्रों को वास्तविक वस्तु की प्रतिनिधि समझता था, अतएव उनके पास किसी चीज के चित्र रहने का मतलब रहा यह था कि सचमुच उस वस्तु पर उसका अधिकार होगा। जब जे जे फ्रेजर ने पहले पहल इस निष्कर्ष का प्रकाशन किया तो सारे यूरोप में इसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया गया। कहा गया कि ये स्वप्न प्रसूत विचार है, कपोल कल्पना है, असत्य है। पर सन 1903 ईस्वी में जब एस रेनिक ने लगभग 1200 प्रागैतिहासिक चित्रणों का प्रकाशित किया तो विरोध ठंडा पड़ गया। देखा गया कि इन चित्रों में सबके सब दूध देने वाले पशुओं, हिरणों, घोड़ों और बकरियों के थे। इस श्रेणी के रूप सृष्टि को तांत्रिक सृष्टि, मैजिकल क्रिएशन कहते हैं। यह देखा गया कि मनुष्य जब हाथ में चित्र खींचने लगता है तो उसके बहुत पहले से ही वह मन में उसकी कल्पना किया करता है। इसलिए तांत्रिक सृष्टि ही मनुष्य की आदिमानव सृष्टि रही होगी। हिंदुओं के वेद यद्यपि आदिमानव सभ्यता के प्रतिनिधि नहीं है, परंतु वैदिक मंत्रों में तांत्रिक सृष्टि के मानव स्वरूप का आभास हम पाते हैं। जो हो, मनुष्य ने सभ्यता के शिखर पर चढ़ने के लिए जो दूसरी सीढ़ी बनाई वह तांत्रिक सृष्टि की सर्वथा विपरीत थी। जब उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि हिरण का चित्र बनाने से ही हरिण नहीं बढ़ते, गाय के अंकित होने से ही घर दूध की नदी नहीं बहने लगती, कोई शक्ति है जो इस तांत्रिक नियम में बाधा पहुंचा रही है, यह शक्ति भयानक है, वह गायों का संहार कर सकती है, वह वन को निःसत्व बना देती है, वह घर के बच्चों पर भी हमला कर सकती है। ज्यों ज्यों मनुष्य सभ्यता की दौड़ में आगे बढ़ने लगा, त्यों त्यों वह इस शक्ति की विकरालता को अनुभव करने लगा। केवल विकरालता ही नहीं, उसने देखा कि यह शक्ति अनेक रूपा है, इसकी पूजा होनी चाहिए। यहीं से भयमूलक रूप की सृष्टि आरंभ हुई। मनुष्य का मन कुछ और आगे बढ़ा। उसने देखा विकराल शक्ति की पूजा हो रही है तो भी भयजनक अवस्था का अंत नहीं होता। उसने अनुभव किया कि केवल विकराल शक्ति भर ही बस कुछ नहीं है, कुछ और है जो इसकी पूजा के बिना भी संसार की रक्षा कर रहा है और पूजा होने पर संसार का नाश कर सकता है। वह अकेले ही पैदा कर सकता है, अकेले ही रक्षा कर सकता है, अकेले ही संहार भी कर सकता है। हवा उसी के इशारे पर नाच रही है, समुद्र उसी के इशारे पर मौन गंभीर मुद्रा में आकाश की ओर ताक रहा है, सूर्य उसी के इंगित पर चल रहा है, वह महान है, वह ब्रह्म है, वह व्यापक है।